कबीर की कविता, धार्मिक और सामाजिक संदर्भ। डॉक्टर विपिन कुमार। समाज के विभिन्न पहलू ही साहित्य का विषय बनते हैं। राजनीति, धर्म, अर्थ और संस्कृति समाज के पहलू हैं। यही पहलू साहित्य के मान्य विषय हैं। साहित्यकार इन्हीं पहलुओं के सकारात्मक या नकारात्मक पक्षों को लेकर साहित्य रचना करता है। साहित्य का लक्ष्य समाज का अवलोकन होता है। कुछ साहित्य समाज के सकारात्मक पहलुओं को दर्शाते हैं, कुछ साहित्य समाज के नकारात्मक पहलुओं को। सकारात्मक पहलू मानव जीवन को सुंदर और सभ्य बनाने में सक्षम होते हैं। नकारात्मक पहलू वे होते हैं जो समाज या मानव जीवन के विभेद की रेखा तय करते हैं। दोनों ही तरह के साहित्य अच्छे होते हैं। सकारात्मक पहलू को लेकर लिखा गया साहित्य मानव के सुकर्म को उजागर करता है, जिससे मानव समाज गर्वान्वित होता है। नकारात्मक पहलू को लेकर लिखा गया साहित्य यह बताता है कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ रहा है, उन बुराइयों को हम किस रास्ते से चलकर दूर कर सकते हैं। कबीर अपने समय के समाज के उन धार्मिक और सामाजिक बिंदुओं को चिंतन का विषय बनाते हैं जो मानव में भेद सिखलाते हैं। भारतीय समाज मुख्य रूप से हिंदू समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभाजित था। यहाँ शासन करने वाला मुस्लिम समाज शिया सुन्नी में विभाजित था तथा धीरे धीरे यहाँ भी जातियाँ और उपजातियाँ बनने लगी। यही वर्ण भेद और जातियाँ उपजातियाँ मानव को एक दूसरे से अलग कर रही थी। इसी भेदोपभेद के कारण समाज में ईश्वर का भी बंटवारा हो चुका था। ईश्वर की उपासना के नए नए तरीके विकसित हो चुके थे। समाज के सक्षम लोग ईश्वर को अपने तरीके से याद करते थे और वही समाज के निर्बल वर्ग के ऊपर लागू करते थे। धीरे धीरे यह उपासना पद्धति समाज के कुछ विशेष वर्ग के हाथों में सीमित रह गई और उनकी जागीर बन बैठी, जिससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ईश्वर की उपासना से भी वंचित रहने लगा। कबीर ने इस विडंबना और बायाडंबर का जमकर प्रहार किया। कबीर ने अपने समय में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को देवता मानकर मनुष्य उसकी उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि मूर्ति उपासना से उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जहाँ समाज को उच्च वर्ग के लोग मूर्ति पूजा करते थे, वहीं समाज के निम्न वर्ग के लोग उससे वंचित रह जाते थे। इसका एकमात्र कारण छुआछूत था। समाज के निम्न वर्ग के लोगों का छूत समझा जाता था। उनका मंदिर प्रवेश वर्जित था। कबीर का कहना है कि जब सभी मनुष्य उस परमेश्वर की संतान है जिसको हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, तो यह कैसा भेद। सभी को उस परमेश्वर की उपासना का अधिकार होना चाहिए। जब वह सभी मनुष्यों का करता है तो वह किसी के लिए बट नहीं सकता। वह केवल मूर्तियों में निवास नहीं करता, वह संसार के कण कण में निवास करता है। केवल एक पत्थर की मूर्ति को देवता मान लेना असंगत है। जो पाथर को कहती देव ताकि वीरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाई तिसकी ढाल अजाई जाई। कबीर हिंदू समाज के प्रचलित तीर्थ व्रत पर भी विचार करते हैं। क्यों क्यों तीर्थ व्रत लपटाना, क्यों क्यों राम जिन जाना, अजरा अमर एक अस्थाना, ताका मरम काह विरलय जाना। जब नहीं होते शब्द न स्वाद, तब नहीं होते विद्या न बाद, जब नहीं होते गुरु न चेला, गम अगमय पंथ अकेला। कबीर कहते हैं कि राम तथा सदगुरु की सेवा ये वास्तव में सत्य एवं सार वस्तु है। सत्य राम सतगुरु की सेवा, पूजहु राम निरंजन देवा, जलकय मंजन जो गति होई, मीना नित ही न्यामय, जैसा मीना तैसा नरा, फिर फिरी जोनी आमय, मन में माइला तीर्थ नामय, तिनि वैकुंठ न जाना, पाखंड करी करी जगत भुलाना, नाहनि राम अयाना। संसार में जो मनुष्य काष्ठ की माला पहनते हैं, माला फेरते हैं, छाप तिलक लगाकर या विश्वास करते हैं कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो यह उनका भ्रम है। कबीर का कहना है कि काठ की माला फेरने से नहीं बल्कि मन रूपी माला को फेरने से ही, उसे संसार से विमुख करने से ही व्यक्ति को परम तत्व का प्रकाश मिलता है। पर व्यक्ति मन का स्थान माला को देकर उसे ही घुमाता है, मन को नहीं। माला पहरे मनमुखी ताथय कछु न होय, मन माला को फेरता जग उजियारा सोई। कबीरदास कहते हैं कि विविध रंगी वेशभूषा बनाने से मुक्ति नहीं मिलती। जो वेशभूषा बनाकर और पेट भर खाकर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, वास्तव में वे लोग अपने लिए सभी साधु मार्ग बंद कर लेते हैं। वैष्णव भया तो का भया, बुझा नहीं बवेक, छापा तिलक बनाए करी दग्ध्या लोक अनेक। कभी पुस्तकी ज्ञान पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। मैं जानू पणिभव भलो, पढ़िवा थय भलो जोग, राम राम सुप्रीत करी भल भल नींद लोग। कबीर पढ़िबो दूर करी, आधी पढ़िया संसार, पीड़ न उपजे प्रीत सुँ तो क्यों करें करे पुकार। इसी तरह से कभी इस्लाम धर्म की रोजा नमाज मस्जिद अजान को भी अपनी मीमांसा का विषय बनाते हैं। हे काजी, तू इस किताब के अंधविश्वास को छोड़कर राम का स्मरण कर। काजी कौन कतेव वशान है, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक नहीं जान है, क्षण कतेव राम कही काजी, खून करत हो भारी, पकड़ी टेक कबीर भगति की, काजी रहे झुंझमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि राम और रहीम तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। मुला कहाँ पुकारे दूरी, राम रहीम रहिया भरपूरी, यह लव अलह गूंगा नहीं, देखे बालक दून मिल माही, हरि गुण गाय बंग मय दीन्हा, काम क्रोध दो विसलम कीन्हा, कहें कबीर यह मूलना झूठा, राम रहीम सबनी मय दीठा। मुर्गी मारना बकरी मारना यह सब मानव धर्म के खिलाफ है। सभी जीव भगवान के प्रिय हैं, अतः ऐसा पाप करने से तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मूला कर लियो न्याव खुदाई, यह विधि जीव का भरम न जाई, कुकड़ी मारे बकरी मारे, हक हक करी बोले, सबे जीव साई के प्यारे, उबर हो गए किस बोले। कबीरदास जी कहते हैं कि हम असहाय दीन और दुखी खुदा के बंदे और सेवक हैं। भगवान दीन व्यक्तियों पर अत्याचार और जो जबरदस्ती का अधिकार नहीं देता, लेकिन यमिया तुमको दूसरों पर अत्याचार करने का अधिकार किसने दिया? तुम जो रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, उससे स्वर्ग नहीं मिलता है। जो जबरदस्ती और बाहरी आडंबरों में विश्वास करके वास्तव में तुमने स्वर्ग का दरवाजा छोड़ दिया है। मियाँ तुम बोल लिया बाणी नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे, तुम्हारा जस्म निभावे, रोजा करे निवाज गुजारे, कलमे भिसत न होई, सतरी काब इक दिला भीतरी, जे करी जाने कोई, माटी एक भेष धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना, कहे कबीर भिस्त छिटकाई, दो जग ही मनमाना। कबीर के विचार में काजी वही है जो शरीर में स्थित चैतन्य का चिंतन करता है, ईश्वर प्रेम के स्नेह ज्ञान की बत्ती जलाता है। स्नेह ज्ञान की बत्ती रहते ही अर्थात प्राण रहते ही जो परम ज्योति को पहचान लेता है, वास्तव में वही काजी कहलाता है। मौलवी कुरान की सुरा को समझकर भाग देता है और मुल्ला पसर कर नमाज पढ़ने जाता है, पर जो अपने शरीर के भीतर नमाज पढ़ता है अर्थात अपने शरीर में व्याप्त परम ज्योति की आराधना करता है, वही मुल्ला सर्वत्र गरजता रहता है। काजी सो जो काया विचार है, तेल दीप में बाती जा रहे, तेल दीप में बाती रहे, ज्योति चीन जय काजी कहें। कबीर समाज के ऐसे वर्ग से संबंधित थे जिनको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। कबीर के अंदर समाज के निम्न वर्ग के प्रति गहरी वेदना थी, इसीलिए उन्होंने समाज के उच्च वर्ग को शोषण प्रवृत्ति का जमकर खंडन किया। कबीर ने उस समय के कट्टरपंथियों का निर्भय आवाज में माखौल उड़ाया। कबीर हमारे सर्वाधिक प्रासंगिक कवियों में हैं, जिन्होंने मध्यकालीन विशृंखल सामंती समाज के प्रति अपना आक्रोश तीखे स्वरों में व्यक्त किया, और वे अपने निर्भय दो टूक बातों से हमें आज भी प्रभावित करते रहे। हरिशंकर परसाई जैसा प्रसिद्ध व्यंगकार उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में देखता है। कबीर के अनुसार यह सारा व्यक्त जगत एक ही तत्व से उत्पन्न है, इसलिए सभी प्रकार की भेद दृष्टि मिथ्या है। मानव मानव में भेद तो परम अज्ञान का द्योतक है। इसी तत्व दृष्टि से प्रेरित कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त निम्नलिखित बुराइयों का विरोध किया। जातिपात, छुआछूत, ऊंच नीच, देहवाद, अर्थवाद, धन संचय, भाईचार, अंधविश्वास। कबीर ने प्रेम और भाईचारा को सर्वोपरि माना। उन्होंने जातिपाति को स्वतः मिथ्या कहा और इसका विरोध किया। वे कहते हैं कि एक ही ज्योति सब में व्याप्त है, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। एक ही जात सकल घट व्यापक, दूजा तत्व न कोई। कहें कबीर सुनौरे संतो, भटकी मरे जन कोई। एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक जात में सब उपजा को बामन को सूदा। पूजपतियों से कबीर ने कहा, कबीर पूज शाह की तू जनी करे खुआर, खरी विगुरन होएंगे लेखा दे तीवार। इन पूजपतियों की विलासता पर कटाक्ष करते हुए कबीर ने कहा, मलमल माही पौंठते परिमल अंग लगाए, ते समने दीसे नहीं देखत गए विलाय। कबीर ने कहा कि अपनी आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना उचित नहीं है। जो जल बाढ़ नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। हरिजन गांठ न बांधई उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। कबीर भौतिक वैभव को महत्व नहीं देते थे। कबीर हय गए गैबर सघन घन, छत्र सजा फरराई, ता सुखा में भिष्या भले हरि सुमिरत दिन जाई। कबीरकालीन समाज में छुआछूत का जहर पूरे समाज में व्याप्त था। कहूँ पांडे सुचि कमन ठाऊं, जिह घर भोजन बैठी खाऊं। माता जूठ पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित लागे, जूठा आवन जूठा जाना, चेत हो क्यों न अभागे। अन्न जूठा पानी पुनि जूठा, जूठी बैठी पकाया, जूठी कड़छी आन परोसिया, जूठे जूठा खाया। चौका जूठा गोबर जूठा, जूठी काढ़ी कारा, कहें कबीर तहिदन सूचय जे हरि भजी तजहें विकारा। छुआछूत का कबीर ने इन शब्दों में भी कठन किया है। काहे को कीजे पाणे छोती विचारा, छोतही ते उपजा संसारा। हमारे कैसे लोह तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूत। कबीर ने हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में व्याप्त वायाचार का खंडन किया है। यद्यपि वायाचारों के खंडन की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रवर्तकों द्वारा किया गया। बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रवर्तक निरीश्वरवादी थे। कबीर ने ईश्वर की में विश्वास जताया। कबीर ने ब्राह्मणों तथा मुसलमानों के वायाचार का खंडन निम्न पदों में किया है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यह सब झूठी बंदगी विरथा पंच निवाच, साँचे मारे झूठ पढ़े काजी करे कैर अकाज। मनमय मैला तीर्थ नामय तिन वैकुंठ न जाना। कबीर ने अपने समय में व्याप्त अंधविश्वास का भी खंडन किया। कबीर ने इसके विरोध में मृत्यु के समय काशी को छोड़ दिया और मगहर में शरण ली। वह अपनी भक्ति के कारण ही अपने आप को मुक्ति का अधिकारी समझते थे। उन्होंने कहा भी है, जो काशी तन तज कबीरा, तव राम ही कहाँ निहोरा रे। कबीर समाज के निम्न वर्ग से आए थे। वे फक्कड़ स्वभाव के थे। उन्होंने अपने समय के समाज के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त किया और उन्होंने सामाजिक संस्कृति पर बल देते हुए मध्यकाल के लिए एक नए मानवतावादी विकल्प का संकेत दिया। कबीर का आग्रह सीधे सीधे सरल जीवन पर है। सारे आडम्बर तामझाम से मुक्त सामंती पुरोहितवादी अलंकरण का निषेध। उन्होंने उन छोटी जातियों को विशेष रूप से संबोधित किया जिनकी कोई सामाजिक आर्थिक हैसियत न थी और जो हर दृष्टि से शोषित पीड़ित थे। एक ही पद में कुम्हार, धोबी, चमार, तेली, नाई, बंजारा आदि का उल्लेख हुआ है और कबीर को जुलाहा जाति की सामान्य स्थिति का बोध तो है ही। उन्होंने सामान्य विषय लिए जो उस समय उनके सामने मौजूद थे, पर वे थे मूलभूत प्रश्न जैसे जातिवाद, छुआछूत, पुरोहितवाद, आडंबर, हर प्रकार का भ्रष्टाचार, छद्म, अंधविश्वास आदि। कबीर का यथार्थ इन्हें मूलभूत प्रश्नों से होकर गुजरता है।